أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ناظرين الكرام، گزشتہ دنوں میں ہم نے ادب اور آداب کے موضوع پر قرآن اور نبی کریم اور ان کی آل کی احادیث کی روشنی میں اس کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی. یقیناً آپ نے اس میں غور و فکر کیا ہوگا، اور اس حوالے سے کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو چکے ہیں اور رمضان المبارک کے اپنے اہداف، اپنے مقاصد ہیں، اور روزے کے وجوب کے اپنے اہداف اور مقاصد اللہ کے پیش نظر ہیں، ان حوالوں سے یقیناً آپ نے ان احادیث اور آیات کی روشنی میں سوچا ہوگا اور غور و فکر کیا ہوگا. ادب اور آداب کے حوالے سے جو بات پہلے کہی جا چکی ہے، اس کا ماحصل یہ ہے کہ ہر وہ کام جو انسان کو دوسروں میں برا لگتا ہے، اس سے وہ اپنے حوالے سے اجتناب کرے، اور ہر وہ کام جو اس کو اپنے لیے اچھا لگتا ہے، دوسروں کے لیے بھی اختیار کرے. ہر وہ صفت، ہر وہ خوبی، ہر وہ کمال جو انسان جب کہیں پر دیکھتا ہے تو فطری طور پر اس کا دل اس کمال، خوبی اور صفت کی طرف مطمئن ہوتا ہے، تمائل پیدا کرتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، اس کے حصول کی جد و جہد کرے. اور ہر وہ چیز، ہر وہ بات، ہر وہ عادت، ہر وہ حرکت جس کی وجہ سے آدمی جب کسی کو اس کام کے ارتکاب کے موقع پر دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے، منفی انداز میں، کہ کاش یہ ایسا نہ کرتا، اس سے اپنے حوالے سے وہ اجتناب کرے. یہ ایک اصولی بات ہے. یہی چیز اس ماہ مبارک میں ہمارے اندر تقویت پانی چاہیے، اور اس کی ہمیں بنیادوں کو مضبوط کرنا چاہیے. غور کی جگہ، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے زبردست قسم کے انتہائی حکمت سے بھرپور جملے اور فرامین ارشاد فرمائے ہیں، جن میں سے ہر جملہ انسان کی زندگی کے لیے ایک لائعمل کی حیثیت رکھتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایاک وکل عمل ینفر عنک حرا، خبردار خبردار خبردار، ہر اس عمل سے اجتناب کرو جس سے آزاد انسان، حر انسان، نیک انسان، گناہ نہ کرنے والا انسان جن عادات یا جن کاموں کی وجہ سے تم سے بھاگنے پر مجبور ہو جائے. ایاک وکل عمل، خبردار خبردار، ہر اس عمل سے خبردار، ہر اس حرکت سے خبردار. ینفر عنک حرا، جو کسی حر آدمی کو، کسی آزاد آدمی کو، کسی نیک آدمی کو، کسی آزاد منش بیدار آدمی کو تم سے متنفر کر دے. ویذل لک قدرا، جو تمہاری قدر و قیمت، جو تمہاری منزلت، جو تمہارے مقام کو گرا دے. ایسا کام جس کی تم سے توقع نہیں ہے، یہ خلاف ادب ہے. ایک بچہ جب کوئی کام کرتا ہے، तो चूंकि वो बच्चा है, इसलिए उसके उस काम को उसके बचपने के हिसाब में डालकर उसको माफ कर दिया जाता है। लेकिन अगर वो वही काम बच्चे की जगह एक 50 साल बुजुर्ग करे, 40 साल बुजुर्ग करे, तो यकीनी तौर पर उसको माफ नहीं किया जा सकता। अगर पाकिस्तान का सदर चड्डी पहनकर शारा में घूमने लगे तो यह इंतहाई मायूब है, लेकिन अगर कोई 4 साल का बच्चा यह काम करे तो कोई हर्ज नहीं आए। यह काम उस शख्स की निस्बत जिसकी एक मंजिलत है, जिसका एक मकाम है, जिसका एक वकार है, उसकी निस्बत यह तोहीन आमेज है, यह खिलाफ अदब है। लिहाजा खिलाफ अदब ऐसे काम जो तुम्हारी मंजिलत को, जो तुम्हारे मकाम को गिरा दें और तुम्हें नीचे ले आए अपने मकाम से, उनसे इज्तनाब करो। वयजलिबु अलैका शर्रन, हर वो काम जो तुम्हें शर की तरफ लेके जाए या जिसके नतीजे में तुम्हारे खाते में बुराइयां पड़ जाएं, तुम्हारे खाते में बदियां पड़ जाएं, शर पड़ जाए, उससे बचो, उससे इज्तनाब करो। वतहमिल बिही इला यौमिल कियामति विजरा, हर वो काम जिसकी वजह से कयामत के दिन तुम्हारे कंधों पर बोझ डाला जाए कि तुमने ये काम किया, उसके नतीजे में अब इस सजा के लिए तैयार हो जाओ, तो उस काम से इस दुनिया में बचो, ये खिलाफ अदब है। खुद दीन, आप जब गौर करते हैं तो महसूस करते हैं कि अद्दीनो अदबुन, दीन खुद अदब का नाम है, तमाम दीन अदब से इबारत है, और रमजान मुबारक में उसी अदब को कमाल तक पहुंचाने के लिए बिस्तर फराहम करता है अल्लाह और मौका देता है इंसान को। गौर कीजिएगा कि इनके फवायद क्या हैं, इनके आसार क्या हैं, इन आदाब के सीखने के। इंसान की शख्सियत की तामीर अदब से होती है। एक अगर स्ट्रक्चर खड़ा है, उस पर आपने प्लस्तर नहीं किया तो वह बदनुमा है, प्लस्तर करने के बाद उस पर रंग नहीं किया तो वह बदनुमा है, स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद जितना खर्चा स्ट्रक्चर के खड़ा करने पर होता है उससे ज्यादा खर्च फिनिशिंग पे होता है। आदाब यानी इंसान की फिनिशिंग, हर चीज को निखारना, हर चीज को चमकाना, हर चीज को उसके मकाम और उसकी जरूरत के मुताबिक ढालना, यानी इन आदाब का नतीजा यह है सीखने का, इस अदब को अपनाने का नतीजा यह है कि इंसान की शख्सियत में निखार आए, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। जो शख्स बाअदब होता है हमेशा लोगों के जहन में नक्श हो जाता है। आप किसी बदअखलाक से मिलते हैं तो उसकी बदअखलाकी भी आपको मुतासिर करती है और आप मरते दम तक उसकी बदअखलाकियों को भूलते नहीं हैं। और अगर आप इंतहाई खुश अखलाक इंसान से मिलें तो वहां पर भी उसका असर यह पड़ता है कि आप रहती दुनिया तक, जब तक आप हैं, आपके जहन में उसकी खुश अखलाकी के असरात इस तरह से नक्श हो जाते हैं कि आप उसके खुल्क को भूलते नहीं हैं। रसूल करीम की जिंदगी खुल्क खू और आदात आदाब के हवाले से नमूने कामिल थी। इसलिए जब कोई शख्स रसूल करीम से एक दफा मिलता था तो उस मिलन और उस मुलाकात की लज्जत को वो कभी भूल नहीं सकता था, भूल नहीं पाता था। वजह क्या है? ये चीजें इंसान के नाम को जिंदा कर देती हैं, इंसान के रोल को जिंदा कर देती हैं, इंसान के लिए दूसरों के दिलों में ये चीज जगह बनाती है। इंसान इन्हीं आदाब की वजह से, इन्हीं अखलाकाए हसना की वजह से लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत बनाता है, जिंदा हो जाता है। आपने देखा होगा और सुना होगा, बहुत सारे हमारे हीरोज होते हैं, चाहे वो किसी खेल के हीरो हों या मूवीज के हीरो हों, जिनको लोगों ने अपना हीरो बनाया होता है और उनकी तस्वीरें घरों में लगाते हैं, उनकी तस्वीरों के पोस्टर्स लगाते हैं, उनके नाम को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उनकी हरकतों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और बाद औकात उनकी तस्वीर लगी बनियाने और शर्टें पहनकर गोया अपने आप को बहुत बड़ा महसूस करते हैं, इसलिए उनकी नजर में वो शख्स हीरो है। लेकिन बहुत सारे मौके पर यह बात साबित शुदा है कि जब उनसे बिलमुशाफा गुफ्तगू होती है, मुलाकात होती है, तो उनकी बद अखलाकी और बुरे रवैये की वजह से ऐसे नौजवानों के दिलों से उनकी सारी मोहब्बत खत्म हो जाती है और खुल जाते हैं उनके वो सारे पोस्टर्स जो उन्होंने खुद लगाए थे और बड़े नाज और मोहब्बत से लगाए थे, वो खुद उखाड़ के फेंक देते हैं कि हमने सोचा क्या था, निकला क्या। यानी आदब, अदाब, आदाब, अखलाक, खुल्क हसना इंसान को दूसरों की निगाह में महबूब बना देता है। ये अदब दीन की तरबियत की असास है। दीन में अगर आप दीनी तरबियत के लिहाज से देखें तो अदब उसकी असास है। मैंने अपने एक बुजुर्गवार दोस्त से यह सुना कि उन्होंने फरमाया कि मैं घर में बैठा हुआ था, मेरी बीवी मेरे साथ थी, मेरा बच्चा सामने बैठा हुआ था, उस बच्चे ने अपनी टांगे मेरे सामने सीधी की, टांगे लंबी करके बैठ गया। मेरी बीवी ने उसको उसी वक्त डांटा कि तुम्हें ये अदब मैंने तो नहीं सिखाया था कि तुम अपने वालिद के सामने टांगे लंबी करके बैठो, जो ये खिलाफ है अदब है। और उसके बाद वो बुधवार फरमा रहे थे हमारे दोस्त कि एक महीने तक मां इस बच्चे से ना बोली। वो फरमा रहे थे कि मेरी बेगम खुद एक मुज्तहिद की बेटी है, मुज्तहिद जादी है, उन्होंने अपने वालिद से, अपने घर के माहौल से जो अदब सीखा था वही अदब अपने बच्चों में देखना चाहती थी। कहते हैं मैंने अपनी जोजा से कई दफा कहा कि ऐसा ना करो, ये बच्चा था। कहा कि बच्चे को अगर अभी से आप ये आदाब नहीं सिखाएंगे तो बड़ा होके वो ऐसे काम करेगा जो उसके मकाम और उसके मनसब के बिल्कुल मुताबिक नहीं आए। और उसके बाद फरमाने लगे कि फिर उसके बाद मैंने कभी नहीं देखा कि वो बच्चा बड़ों के सामने टांग लंबा करके, टांग लंबी करके और बेअदबी के साथ लेटे या बैठे। हर चीज के आदाब होते हैं, महफिल के आदाब अलग से होते हैं, बुजुर्गों की बारगाह में बैठने के आदाब अलग से होते हैं, छोटों से गुफ्तगू के आदाब और तरह के हैं, बड़ों से गुफ्तगू के आदाब और तरह के हैं, खाने के आदाब और तरह के हैं, पीने के आदाब और तरह के हैं, सोने के आदाब और तरह के हैं, दोस्तों से रवैयों के आदाब और तरह के हैं, अपने बच्चों से रवैये के आदाब और तरह के हैं, अदब मअल्लाह, अल्लाह से राबते के आदाब और तरह के हैं, अल्लाह के बंदों से राबते के आदाब और तरह के हैं। इन तमाम आदाब को सीखने की जरूरत है, इन तमाम आदाब को समझने की जरूरत है। जबान के इस्तेमाल के आदाब क्या है, कानों के इस्तेमाल के आदाब क्या है, आंखों के इस्तेमाल के आदाब क्या है, हाथों के इस्तेमाल के आदाब क्या है, पांवों के इस्तेमाल के आदाब क्या है, शहर में चलने के आदाब क्या है, रुकने के आदाब क्या है, मुसाफिर के आदाब क्या है। अगर आप अदब के हवाले से देखें तो एक दरिया है और इन तमाम पहलुओं पर इंसान की तरबियत की बुनियादें दीन फराहम करता है। दीन यानी इंसान की तरबियत की वो असास। अच्छा, इसी तरह से जो शख्स इन आदाब में अपने आप को ढाल लेता है वही फिर नमूना बन जाता है। लकुम फी रसूलिल्लाही उस्वतुन हसनतुन, रसूल करीम में आपके लिए उस्वे हसना है, यानी बेहतरीन नमूना। क्यों? इसलिए कि जितने भी इलाही आदाब थे वो सारे के सारे आदाब रसूल करीम की जाते मुकद्दस में यकजा तौर पर जमा थे, लिहाजा आप उनको जब एक दफा देखते थे तो तमाम आदाब आपको एक जगह नजर आते थे। ये कमाल है। जब आप अदब के साथ जिंदगी गुजारते हैं, आदाब सीखकर गुजारते हैं, तो आपकी जिंदगी का मकसद पूरा होता है, वरना वो मकसद पूरा नहीं होता। हैवानी जिंदगी इंसान का मकसद नहीं है, खाना पीना सिर्फ इंसान का मकसद नहीं है, सिर्फ बच्चे पैदा करना इंसान का मकसद नहीं है, बल्कि इंसान का मकसद तकामुल है, सिफात में तकामुल, रूह में तकामुल, अखलाक में तकामुल, और वो तभी हो सकता है जब इंसान इन आदाब को अपनाने के लिए जिद्दोजहद करता है, और खुसूसन ऐसे महीने में उसके जब तमाम वसाइल फराहम होते हैं तो उनसे भरपूर इस्तेफादा करता है। यही आदाब बायस बनते हैं कि इंसान अपने आप को गुनाहों से रोके, यही आदाब बायस बनते हैं कि इंसान अल्लाह और रसूल की इताअत करे और पैरो बने, यही आदाब तहजीब नफ्स का जरिया बनते हैं और इंसान की रूह की पाकीजगी का जरिया बनते हैं। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि हमें इन आदाब के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक और सलाहियत अता फरमाए। यहां पर सिर्फ दो नुक्ते अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। एक ये कि किस तरह से इंसान इन आदाब की तरफ जा सकता है। सबसे पहले ये कि अपने आप को पहचाने, मैं बहुत मुख्तसर करूंगा वरना इसी पर आधा घंटा मजीद गुफ्तगू हो सकती है। इंसान अपने आप को पहचाने और अदब की जरूरत पर यकीन हासिल करें कि आदाब का सीखना इंसान की सबसे पहली और सबसे ज्यादा जरूरत है, और फिर उन आदाब के फवायद पर गौर करे, तफक्कुर करे और गहराइयों में जाए कि इन आदाब का इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, गौर करे इस बात पर। और इसके साथ साथ उन रिवायात और आयात पर गौर व फिक्र करे जो इन आदाब के सीखने के हवाले से अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाए हैं और रसूल करीम से हम तक मनकूल होकर पहुंचे हैं, नकल होकर पहुंचे हैं। अमली तौर पर क्या करें? नबी करीम और आइम्मे अतहार की सीरत को अपने लिए नमूना बनाए, देखें कि उन्होंने क्या किया, उसी तरह से करने की कोशिश करें। जहां पर इल्म ना हो वहां पर पूछे, फसअलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जहां पर इल्म ना हो वहां पर पूछे। और इसी तरह से अपने आप को, दूसरा मरहला यह है कि अपने आप को अल्लाह और रसूल के बनाए हुए कवानीन के ताबे बना दे और उनके सुपुर्द कर दे, उसका अपना इख्तियार खत्म हो जाए, वो उस आईन और कानून के मुताबिक अपने आप को ढाल ले जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमारे सामने भेजा है। अगर ये काम हम करते हैं तो यकीनी तौर पर हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद पूरा हो जाता है। वस्सलामु अलैकुम।